संप्रभुता के लक्षण। विविध लेखकों ने संप्रभुता की जो परिभाषाएं की हैं तथा ऑस्टिन ने उसके संबंधित जो विवेचन किया है उसके अध्ययन के पश्चात हम संप्रभुता के मुख्य लक्षणों का विवेचन सरलतापूर्वक कर सकते हैं। संप्रभुता के जो मुख्य लक्षण हैं उन्हें हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, मौलिकता। किसी भी राज्य की संप्रभुता मौलिक होती है, वह किसी अन्य सत्ता द्वारा राज्य को प्रदान नहीं की जाती। अगर वह मौलिक नहीं हो तो इसका अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए कि वह सर्वप्रिय शक्ति नहीं है। दूसरा, निरंकुशता। संप्रभुता किसी भी राज्य की सत्ता का एक ऐसी शक्ति होती है जिस पर किसी अन्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। यह शक्ति आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। वह अन्य शक्ति के बंधनों से रहित होती है। इसलिए निरंकुशता को संप्रभुता का महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। तीसरा, स्थायित्व। संप्रभुता का सबसे पहला लक्षण स्थायित्व तत्व है। जब तब राज्य विद्यमान रहता है उसकी प्रभु शक्ति भी विद्यमान रहती है और यह बात सभी प्रकार के राज्यों के विषयों में सदा के लिए सत्य है। प्राचीन काल में जब राज्यों का स्वरूप स्वेच्छाचारी एक तंत्र का होता था तब भी राजा की मृत्यु के बाद प्रभु शक्ति का अंत नहीं होता था और वह उस व्यक्ति के हाथ में आ जाती थी जो मृतक के बाद राजा होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि संप्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करने वाला बदल सकता है तथापि प्रभु शक्ति पूर्वतः बनी रहती है। आधुनिक युग में भी जब राज्य का स्वरूप लोकतंत्रात्मक और प्रभु शक्ति का निवास जनता में माना जाता है वह स्थायी होता है। लोकतंत्र राज्यों में प्राय सरकारें बदलती रहती हैं परंतु सरकारों के इन परिवर्तनों से प्रभुत्व शक्ति के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अखंड व स्थिर बनी रहती है यद्यपि उसका प्रयोग करने वाली सरकारें बदल जाती हैं। इसी प्रकार यदि कोई राज्य किसी राज्य को जीत लेता है तो भी संप्रभुता का स्थायित्व नष्ट नहीं होता क्योंकि विजित राज्य की प्रभु शक्ति विजेता राज्य के हाथ में चली जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संप्रभु सत्ता सदैव स्थायी रहने वाला दृष्टिकोण है। तीसरा, अनन्य तत्व। संप्रभुता का एक अन्य लक्षण अनन्य तत्व होता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य से संप्रभुत्व संपन्न सत्ता एक ही हो सकती है। ऑस्टिन के इस कथन का कि सर्वोच्च सत्ताधारी अपने जैसे किसी अन्य सत्ताधारी के आदेशों के पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता यही तात्पर्य है कि राज्य में संप्रभु अनन्य होता है। राज्य के तब सब निवासी उसी एक संप्रभु के आदेशों का पालन करते हैं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई संप्रभु एक राज्य में नहीं हो सकता। यही कारण है कि हम संप्रभुता के विषय में कह सकते हैं कि वह एक ही या अनन्य होती है और उसका अनन्य तत्व उसे सर्वप्रिय बनाता है। एक से अधिक संप्रभुताओं का अस्तित्व मान लेना राज्य की सर्वोच्च सत्ता को अस्वीकार करता है। पांचवा, सर्वव्यापक तत्व। संप्रभुता का एक अन्य लक्षण उसका सर्वव्यापक तत्व होता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के अंतर्गत जो भी प्रदेश पदार्थ मनुष्य अथवा जो भी मानव समुदाय बने होते हैं उन सब पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण अथवा रहता है। यद्यपि ऐसा अवश्य है कि कुछ व्यक्ति क्षेत्रों अथवा वस्तुओं को स्वेच्छा से प्रभु शक्ति अपने नियंत्रण में नहीं रखती, तथापि साधारणतः प्रभुत्व शक्ति का अधिकार व उसका नियंत्रण सर्वव्यापी होता है। उदाहरण के लिए विदेशी राजदूतों के निवास स्थान, यात्रा आदि के लिए आए अन्य देश के शासक, और यात्रा के मध्य में जाते हुए किसी अन्य देश के जहाज आदि को प्रभुत्व शक्ति के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है, किंतु ये प्रतिबंध केवल स्वेच्छित होते हैं, अन्यथा राज्य के क्षेत्र में कोई भी मनुष्य, समुदाय अथवा पदार्थ नहीं होता जो प्रभुत्व शक्ति के अधिकार व नियंत्रण के बाहर हो। यही कारण है कि राज्य की प्रभुत्व शक्ति को सर्वव्यापक कहा जाता है। सर्वव्यापक तत्व उसका एक मुख्य लक्षण है। 6. अपृथ्वीकरण तत्व। संप्रभुता का एक लक्षण अपृथ्वीकरणीय तत्व है। इसका तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसी वस्तु है जिसे राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, यदि इसे राज्य से पृथक कर दिया जाए तो राज्य राज्य नहीं रह सकता, अथवा यो कहना चाहिए कि बिना अपने को नष्ट किए राज्य प्रभुत्व शक्ति को अपने से पृथक नहीं कर सकता। प्रभुत्व शक्ति वस्तुतः राज्य के लिए प्राण के समान है, अतः पहले तो उसे राज्य रूपी शरीर से पृथक किया ही नहीं जा सकता, और यदि उसे पृथक कर भी दिया जाए तो उसके परिणाम स्वरूप राज्य की रूपी शरीर का अंत हो जाएगा। प्राय ऐसा भ्रम हो सकता है कि किसी राज्य के खंड से पृथक होने से अथवा उसका कोई भाग अन्य राज्य द्वारा जीते जाने पर उस खंड अथवा भाग से संबंधित संप्रभुता उस राज्य से पृथक हो जाती है, पर वास्तविकता यह नहीं है। वस्तुतः ऐसी दशा में प्रभुत्व शक्ति का स्थानांतरण होता है, पृथकीकरण नहीं, अथवा उसका प्रयोग दूसरे प्रभु द्वारा होने लगता है। उदाहरणतः भारत में पाकिस्तान अलग हुआ, किंतु पृथक होने वाले प्रदेशों से प्रभु शक्ति पृथक हो गई ऐसी बात नहीं हुई। इन प्रदेशों की प्रभु शक्ति पूर्वतः विद्यमान रही और अब भी विद्यमान है, यद्यपि उसका प्रयोग भारत सरकार द्वारा ना होकर पाकिस्तान सरकार द्वारा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के अनेक खंड होने से या उसकी सीमाओं में परिवर्तन होने से अथवा एक राज्य के दूसरे में मिलने से प्रभुत्व शक्ति राज्य से पृथक नहीं होती, वरन उसके वे प्रयोगकर्ता बदल जाते हैं जिनके द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। चूँकि प्रभुत्व शक्ति राज्य से तभी पृथक की जा सकती है जब राज्य का सदा के लिए विनाश हो जाए, और तभी भी उसे अपृथकनीय माना जाता है। 7. एकता व अविभाजनीयता। प्रभुत्व शक्ति का एक अन्य लक्षण इसकी अविभाजनीयता है। इसे तात्पर्य यह होता है कि प्रभुत्व शक्ति का विभाजन नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, यदि कोई यह चाहे कि प्रभुत्व शक्ति का विभाजन करके उसका प्रयोग एक स्थान पर अनेक सत्ताधारियों द्वारा हो सके तो यह संभव नहीं। ऐसा करने से संप्रभु के अनेक समान पदी उत्पन्न हो जाएंगे और संप्रभुता की उस विशेषता का नाश हो जाएगा जिसे सर्वोपरिता या अनन्य तत्व कहा जाता है। यही कारण है कि संप्रभुता को अविभाजनीय माना जाता है। एकता इसका सबसे बड़ा गुण है। इस संबंध में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु शक्ति की अविभाजनीयता से अनेक विचार असहमत भी हैं। उदाहरणतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनेक लेखकों ने रक्षित राज्यों जैसे अर्ध स्वतंत्र राज्यों की चर्चा की है जो बाहरी दृष्टि से पूर्ण प्रभुत्व संपन्न होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने प्रभु शक्ति की अविभाजनीयता का प्रतिपादन किया और उन राज्यों को प्रभुत्व संपन्न मानते हुए जिन्होंने मिलकर संघ का निर्माण किया संघ को भी प्रभुत्व संपन्न माना, तथा इस प्रकार द्वैत संप्रभुता संपन्नता को स्वीकार किया। मेक्सिको व स्विट्जरलैंड के संविधानों में भी प्रभुशक्ति की विभाजनीयता को स्वीकार किया गया है। अंग्रेज इतिहासकार फ्रीमैन ने तो इस बात पर बल दिया है कि संघात्मक आदर्श की पूर्णता के लिए संप्रभुत्व शक्ति का पुनः विभाजन अनिवार्य है। जर्मन साम्राज्य के निर्माण के समय जर्मन लेखकों ने भी इस प्रकार का विचार का समर्थन किया था कि संप्रभुत्व शक्ति विभाजनीय है। जहाँ तक संघात्मक व्यवस्था का आधार पर प्रभु शक्ति की अविभाजनीयता के विरोध की बात है, यह विरोध प्रभु शक्ति व शासन शक्ति को एक समझ लेने के कारण है। संघात्मक राज्यों में संघ व उसकी इकाइयों के मध्य प्रभुत्व शक्ति का विभाजन न होकर शासन शक्ति व उससे संबंधित कार्यों का विभाजन होता है, तथा प्रभुत्व शक्ति संघात्मक प्रणाली में ही संपूर्ण संघ में निहित होने के कारण एक अविभाजनीय होता है।